ओम शांति। एक बार जितने भाव और भावनाएं, इमोशंस और फीलिंग्स कहीं पर घूमने गए पिकनिक के लिए एक टापू पर, उसमें बहुत सारी भावनाएं थी, फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, और वो बहुत खेल कूद करने लगे और बहुत व्यस्त हो गए वहां जाकर। पर अचानक एक फीलिंग ने, एक इमोशन ने बताया कि तूफान आने वाला है, सब लोग अपनी अपनी नावों पर जाकर बैठ जाओ क्योंकि वापस जाना है, नहीं तो फंस जाएंगे यहां पर। तो सब भागे और अपने अपने नाव में जाके बैठ गए। पर एक इमोशन, एक फीलिंग ऐसी थी कि उसको काम बहुत करना था वहां पर, प्रेम, जो प्रेम था उसको काम बहुत काम करना था, तो वो अपने काम में लगा रहा। और तब तक सब लोग अपनी अपनी नाव में बैठ गए, और जब वो आया जाने के लिए, देखा एक भी नाव खाली नहीं है, बहुत सारी नावें थी पर सब लोग बैठ चुके थे। तो सब लोग अपनी अपनी नाव में कुछ एक्स्ट्रा सामान भी भर के थे, इसके लिए उसके लिए जगह नहीं थी। तो सबसे पहले एक नाव वहां से गुजरी, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। उसने पूछा क्या मैं आ सकता हूं, उसने कहा जगह कहां है, हीरे जवाहरात सबसे भर दिया है, जगह ही नहीं तुम्हारे लिए। फिर वो नाव चली गई, फिर दूसरी नाव आई। वो नाव का जो मालिक था, वैनिटी, वैनिटी अर्थात घमंड। तो प्रेम ने पूछा क्या मैं तुम्हारी नाव में आऊं, तो घमंड ने कहा मेरी नाव गंदी हो जाएगी, तुम्हारे पांव तो देखो पहले, इतनी स्वच्छता यहां पर। तीसरी नाव आई, उसका जो मालिक था दुख, सौरव, उससे पूछा क्या मैं आऊं, तो दुख ने कहा दुख के पास टाइम ही नहीं है दूसरी की बातें सुनने में, वो तो अपने ही गमगीन अवस्था में। तो उसने कहा यहां, उसने ध्यान भी नहीं दिया। फिर एक चौथी नाव आई, सुख, हैप्पीनेस, वो इतना खुश था कि इसकी आवाज भी उसने नहीं सुनी, खुशी को कहां टाइम है दूसरे की आवाज सुनने में, वो अपनी ही खुशी में मगन। तो वो भी चली गई। फिर एक अचानक एक नाव आ गई और जिसने कहा बैठो, और वो प्रेम उसमें बैठ गया और उस नाव ने उसे छोड़ दिया। और जब नाव उस पार पहुंची तो वहां उसे ज्ञान मिला, प्रेम को। तो प्रेम ने उस ज्ञान से पूछा ये कौन था जिसने मुझे छोड़ा, कौन था जिस जो नाव लेकर आया, वो किसकी नाव थी। ज्ञान ने कहा वो समय था, और केवल समय ही तुम्हारा महत्व समझ सकता है और कोई नहीं, बाकी जितने थे वो कोई भी तुम्हारा महत्व नहीं जानता तुम क्या हो। तो प्रेम ऐसी चीज है कि जिसका महत्व वो जब चला जाता है तब समझ में आता है। प्रेम ऐसी चीज है जो केवल समय के साथ ही उसका महत्व समझा जा सकता है। और इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम कौन सा है, ईश्वरीय प्रेम, परमात्मा प्रेम। तो कल की मुरली में कौन किससे मिलने आया, स्नेह के सागर आए किससे मिलने, स्नेह के पात्र, पात्र अर्थात लायक, पात्र अर्थात योग्य, पात्र अर्थात हकदार, पात्र अर्थात जो उपयुक्त है, जो काबिल है, जिनमें काबिलियत है, वही प्रेम कर सकते थे ऐसे एप्रोप्रिएट, ऐसे वर्दी, ऐसे वर्तवाइल, ऐसे हकदार। तो प्रेम का सागर आया है प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने, पात्र अर्थात कंटेनर भी, पात्र अर्थात जो जिसमें प्रेम भरा हुआ है, जो पात्र बना है, एक बर्तन, कंटेनर, यूटेंसिल, तो उसके कितने सारे अर्थ है। तो प्रेम के सागर आए हैं प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने। क्या क्या कहा, प्रेम क्या क्या करता है, 10 बातें बताओ। सबसे पहले प्रेम विमान है। प्रेम क्या है, विमान किसको निकालना होता है, निकालो जरा। स्नेह क्या है, ठीक है। तो ये जो स्नेह का विमान है, इसके मछली है। स्नेह के उस विमान में पंख होते हैं, उस विमान में पायलट होता है, उस विमान में एयर होस्टेस होती है, उस विमान में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, बेल्ट लगाया जाता है, उस विमान में बटन होता है, उस विमान में सारा कंट्रोल होता है, एसी, खिड़की, उस विमान में क्या क्या होता है और इस विमान में क्या होता है। तीन प्रकार के विमान है। एक विमान की चर्चा आज की साकार मुरली में आया है, माया के सुख ने मनुष्य को भरमाया है। कौन से सुख? ये विमान। एक सुख है, एक विमान है सतयुग का, एक विमान है इस कलयुग का, और ये विमान है संगम युगी विमान। इस विमान में बैठ के आए हो, उस विमान से तेजी से जा सकते हो, इससे सबसे ज्यादा तेजी से जा सकते हो। उस विमान ऊपर से उड़ता है, ये विमान तो वो सबसे ऊपर से उड़ता है, ये कहीं से भी उड़ सकता है। उस विमान और इस विमान में क्या, उस विमान की कीमत ज्यादा है। तो तुम टू व्हीलर पर नहीं आए हो, तुम फोर व्हीलर पर भी नहीं आए हो, तुम बैलगाड़ी पर भी नहीं आए हो, तुम ट्रेन में भी नहीं आए हो, तुम पैदल भी नहीं आए हो, तुम उस फ्लाइट में भी नहीं आए हो, उस साधारण विमान में भी नहीं आए हो। किस विमान में आए हो प्रभाकर भाई? स्नेह के विमान में आकर पहुंचे हो। तो स्नेह विमान है, कितनी अच्छी तुलना है कि स्नेह विमान है। स्नेह चुंबक है। कौन सा चुंबक? अलौकिक चुंबक खींच लेता है सीधा। तो पहली चीज स्नेह विमान है, दूसरी चीज स्नेह लहर है, स्नेह के लहरों में लहरा रहे हो, तीसरी चीज स्नेह फाउंडेशन है तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे जीवन का फाउंडेशन, पांचवा स्नेह तुमको क्या बना देता है, याद सहज कर देता है, याद सहज, क्योंकि जहां स्नेह है वहां याद सहज है। पांचवा यह स्नेह की चार विशेषताएं है, चार सिद्धांत, चार घटक। कौन कौन से चार घटक स्नेह के? सबसे पहला यह स्नेह निस्वार्थ है, संसार का स्नेह स्वार्थ भरा है, संसार के सारे संबंध स्वार्थ है, उसमें निहित स्वार्थ के लिए हर व्यक्ति करता है। एक उपनिषद में लिखा है कि पति अपने पत्नी से इसलिए प्यार नहीं करता कि वो पत्नी अच्छी है, वो अपने लिए प्यार करता है उससे, पत्नी पति से अपने लिए प्यार करती है। याज्ञवल्क अपनी पत्नी को समझाता है, गार्गी मैत्री उसको ये समझाता है, याज्ञवल्क उसमें ये पूरा वृत्तांत है, संसारिक प्रेम क्या है, स्वार्थ से भरा हुआ है। तो परमात्मा प्रेम कैसा है? निस्वार्थ। परमात्मा प्रेम का दूसरा घटक यह सच्चा है, संसार का इसका मतलब झूठा। संसार के सारे प्रेम क्या है? झूठ। उसमें जरा रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, लबालब भरा है झूठ से, ओवरफ्लो होता है झूठ से, इतना झूठ भरा है उसमें संसार के प्रेम में। और व्यक्ति उसी को सच्चा समझता है और यही समझता है कि ये मुझे बहुत प्यार करता है और मैं इसको बहुत प्यार करता हूं, दोनों ही भ्रमजाल में है, माया ने भरमाया है, आज कहा ना, भरमा के रखा है, बरगलाया है माया ने सबको, यही स्वर्ग है, यही महल माड़िया एरोप्लेन और ये सब कुछ स्वर्ग है। ये प्लेन और वो प्लेन कैसा है उनको पता ही नहीं। तो ये प्यार कैसा है? सच्चा। और वो कैसा है? झूठ। तीसरा कंपोनेंट ये दिल का है, वो ऊपर ऊपर का है, सतही है, सुपरफिशियल है, दिमाग का है, ये दिल और वो दिमाग, इधर दिल उधर इंटेलेक्ट यूज किया जाता है, और इंटेलेक्ट जहां है वहां संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद है, क्योंकि उसमें अहंकार छिपा रहता है। उस इंटेलेक्ट वाला प्रेम, इंटेलेक्ट वाला सरेंडर, वो सरेंडर पद हो जाता है, समर्पण क्रिया और स्थिति का नाम है, किसी पद का नहीं कि जिस पर आड़ू होकर अपनी सत्ता जमाई जाए और वो ये अहंकार को जन्म दे। वो पद का नाम नहीं है पर पद के रूप में उसे प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अर्थ उसका उल्टा है। तो ये प्रेम कैसा है? दिल का. संसार का प्रेम कैसा है? दिमाग का. चौथा आत्मिक. संसार का प्रेम देहभान वाला, जिसमें बेचैनी है, जिसमें अस्थिरता है. संसार का देहभान का प्रेम इंद्रियों को विचलित करता है, इंद्रियों में उत्तेजना भरता है और एडिक्शन क्रिएट करता है और लत, आदत, और जो उसको विवश कर देता है विकार के लिए, क्योंकि उत्तेजना से भरा है. इंद्रिय बहुत हलचल में आ जाती है, उससे उत्तेजनाओं से भर जाती है, वासना से भरने भरने वाला है वो प्रेम. आत्मिक प्रेम शरीर को शांत करता है, आत्मिक प्रेम मन को शांत करता है, आत्मिक प्रेम इंद्रिय जीत बनाता है. तो परमात्मा प्रेम आत्मिक प्रेम है. तो इसमें ये चार बातें हैं परमात्मा प्रेम में. निस्वार्थ है, सच्चा है, दिल का है और आत्मिक है. ऐसा ही प्रेम विश्व की आत्माओं के साथ हो तो संबंधों में हलचल नहीं होगी, नहीं तो एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं बेचैनी क्रिएट करती है. तो ये पांचवा, छठवा, परमात्मा प्रेम योगी बना देता है, सहज योगी बना देता है. ये प्रेम में योगी बनने के लिए नहीं तो कितने दो मार्ग है. एक तो त्याग का मार्ग, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, छोड़ने का मार्ग है. एक है छोड़ना कुछ भी नहीं है, प्यार से भर देना. इतना प्यार से भर दो, इतना प्यार से भर दो कि योगी स्वतः ही आत्मा बन जाए, योग स्वतः ही लग जाए, संसार से वियोग स्वतः हो जाए. वो मार्ग जो है वो संघर्ष का मार्ग है, जिसमें लड़ाई है विकारों से. इस मार्ग में लड़ाई नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेम से भर देना है बस. ये दादियों का मार्ग है, जिन्होंने अपने आप को इतना प्रेम से भर दिया, इतना प्रेम से भर दिया कि स्वतः योगी बन गई सबके सब. दूसरा मार्ग संघर्ष का मार्ग है, जिसमें लड़ाई लड़ाई है दिन रात माया से. जलाते जाओ आज का नम, रावण जलता ही नहीं, जला कब से रहे उसको. तुम्हारा नंबर वन सबसे, दुनिया को ये पता ही नहीं कि उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन है. बहुत अच्छे वाक्य आज की मुरली में. संसार को ये पता ही नहीं कि उनका सबसे पुराना सबसे बड़ा शत्रु कौन है, अपने शत्रु का ही नॉलेज नहीं है. दोस्त ना समझे परंतु सब शत्रु से अनभिज्ञ है कि ये शत्रु है. अगला, ये जो प्यार है, ये प्यार चेहरे पर चमक की रेखा है, स्नेह की चमक की रेखा है. ये प्यार, ये प्यार चुंबक है, अलौकिक चुंबक खींचता है वो. ऐसा ये प्यार है. उसके बाद इस प्यार की निशानी क्या है? डबल विदेशियों से मुलाकात, प्यार की निशानी क्या है? दौड़ दौड़ के आ गए, यही प्यार की निशानी है. प्यार की निशानी क्या है? तुम दौड़ दौड़ के आ गए, यही प्यार की निशानी है. कैसे दौड़ के निखिलेश भाई, कैसे दौड़ के आ गए? जैसे बावरी जिसका पति खो गया था और अब मिल गया और गलियों से निकल पड़ी है दौड़ते हुए. तो ऐसे दौड़ दौड़ के आ गए. फिर इस ये प्यार कितना है, मेजरमेंट क्या है इस प्यार का? कौन सा गीत गाया? न सागर में जल इतना, न आसमान में तारे इतना, बनाया प्रभु ने, क्या गीत है, हमें अपना. तो अथा बेहद का प्यार और बेहद का स्नेह है, इसे गिना नहीं जाता, अमाप्य है. अथा है, अतल है, अतुल है, अतुल्य है. ऐसा ये प्यार इमेजरेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता, अनफैदमेबल, जिसकी गहराई की था नहीं लगाई जा सकती, ऐसा ये प्यार है. और लास्ट दसवां पॉइंट, अब तुमको एडिशन क्या करनी है? प्यार तो बहुत है, अब तुमको अंडरलाइन क्या करनी है? अभी यहां से चालू करते हैं हम, दो दो शब्दों पर पूरी मुरली है. दो 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 दो. सबसे पहले दो तो है, दो के साथ प्रेम की तुलना की गई. एक तो प्रेम विमान है और प्रेम चुंबक है. एक दो। दूसरा, तुम्हें अब दो चीजें करनी है, एक तो अंडरलाइन करना है और एडिशन क्या करनी है, प्रश्न पूछा है। तो दो काम करने हैं। कौन से दो काम करने हैं? ये प्रेम तो बहुत है तुम्हारे पास, पर करना क्या है? अब एडिशन क्या करनी है, अंडरलाइन क्या करनी है, दो चीज, एडिशन अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए बाबा हमेशा अंडरलाइन शब्द ही प्रयोग करते हैं इंग्लिश। आज तक दूसरा क्या कहते हैं उसको, अंडरलाइन को रेखांकित बोला किसी मुरली में? निम्न रेखांकित बोला आज तक कभी? हार्ड है और अंडरलाइन इजी है। तो माइयों को ये समझ में आ जाएगा कि अंडरलाइन, अच्छा। तो अंडरलाइन क्या करना है और एडिशन क्या करनी है, दो चीजों की एडिशन करनी है। सदा अखंड महादानी और सदा अखंड सहयोगी। सहयोगी किसके लिए? ब्राह्मण परिवार के लिए। महादानी किसके लिए? प्यासी आत्माओं के लिए, दुखी आत्माओं के लिए। उनको दो काम करने हैं उनके साथ, जो निर्बल है उनमें बल भरना है और जो दुखी है उनको सुखी करना है। ये दो काम अखंड महादानी में। अच्छा, अब दूसरा, ये दान दोगे तो तुमको फायदा क्या है? डबल फायदा है, दो फायदे। कौन कौन से? एक तो उन आत्माओं का कल्याण होगा, उन आत्माओं का पहले कल्याण होगा, और दूसरा स्वयं दो चीजें होगी, समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, निर्विघ्न हो जाएंगे, मेहनत से मुक्त। मेहनत उसी में ऐड कर दो, मेहनत और विघ्नों से मुक्त और समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। ये तुम स्वयं के लिए, और ये काम तुमको कब करना है? समटाइम नहीं और समथिंग नहीं, सदा करना है। सदा के स्नेही, समटाइम और समथिंग बाबा को पसंद नहीं है, ये दो चीज उसको पसंद नहीं है। उसको कौन से शब्द पसंद है? डबल और सदा, ये दो शब्द ज्यादा पसंद है। सिंगल शब्द उसको पसंद नहीं है। बाबा को कौन कौन से शब्द पसंद है और कौन कौन से शब्द नहीं पसंद, इसकी एक लिस्ट बनाई जा सकती है। कौन कौन से शब्द उसको पसंद नहीं है? पसंद नहीं है, कभी कभी उसको पसंद है, समटाइम उसको पसंद नहीं है, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, कर लेंगे, कारण उसको पसंद नहीं है, और उसको क्या अच्छा नहीं लगता है? मेहनत उसको पसंद नहीं, लेकिन उसको पसंद नहीं, कभी कभी उसको पसंद नहीं, और क्या पसंद नहीं है? मांगना उसको पसंद नहीं है, उदासी उबासी उसको पसंद नहीं, और अलबेला, अरे वो सब नहीं। कौन से शब्द उसको पसंद नहीं? वाय वाय कर, हाय हाय उसको पसंद नहीं है, फ्लाय फ्लाय उसको पसंद है, बहानेबाजी उसको पसंद नहीं, और उसको क्या पसंद नहीं है? भगवान की पसंद और नापसंद की, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ गॉड। सुना कभी भक्ति मार्ग में? बाबा दो चीजें देख भी नहीं सकते और बच्चे मेहनत करे, ये बाबा क्या दो चीजें? बाबा देख नहीं सकते और बाबा को अच्छा नहीं लगता। बच्चों की मेहनत, बाप को, दो चीजें अच्छी नहीं लगती और बाबा देख भी नहीं सकता। तो करना क्या है हमको? अखंड महादानी, निरंतर दान करते रहना, सदा दान करते रहना। ये अंतर है, ये अंतर को मिटाओ। ये इसकी वजह से परसेंटेज में अंतर पड़ रहा है, तो ये दान करो। अभी पांच चीजों का दान करना है, पांच चीजों से पांच चीजों का दान। कौन कौन सी? सबसे पहले तो मनसा से शक्तियां दो, और अब ये बताना कि सबसे पावरफुल कौन सा इन पांचों में से। वाचा से ज्ञान का दान करो, कर्मना से गुणों का दान करो, वर्च्यूज, संबंध संपर्क से, कनेक्शन और रिलेशनशिप से खुशी का दान करो, और पांचवा बुद्धि से, इंटेलेक्ट से समय का दान करो। सबसे पावरफुल कौन सा है पांचों में से? पांचवा। क्यों? मनसा से किसी को शक्तिशाली बना देना कितना बड़ा दान है। तो पहला बताया मन से शक्तियां दो, बाबा ने ड्रिल कराई लास्ट में, एक लास्ट में ड्रिल में तीन सामान दिए थे। तीसरा जो सामान था, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मुझसे मनसा से शक्तियां सारे विश्व में फैल रही है। तो एक ही जगह बैठा हुआ है व्यक्ति, परंतु मन से पावर्स वाइब्रेट हो रही है, मन से शक्तियां विकीर्ण हो रही है संसार में और आत्माओं को शक्ति का आभास अनुभव हो रहा है। बहुत बड़ी सेवा है ये मनसा, पर उसके लिए मनसा बहुत पावरफुल चाहिए। मनसा सेवा हरेक नहीं कर सकता है। मनसा सेवा वास्तव में करने की चीज ही नहीं है। मनसा कांच की तरह है, ये जो है आत्मा कांच की तरह स्वच्छ बन जाए तो उसकी किरणें इस पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होगी, जहां जानी है अपने आप जाएगी। करना थोड़ी होती है इसको पकड़ पकड़ के, वो अभ्यास है, वो भी जरूरी है, परंतु अगर देखा जाए पर वास्तव में आत्मा कांच की तरह बन जाए, स्वच्छ निर्मल पवित्र, तो उसकी किरणें जैसे ही इस पर पड़ेगी परावर्तित होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, सब जगह जाएगी अपने आप, जहां जानी है अपने आप जाएगी। पर नहीं जा रही है तो फिर इमर्ज करो पकड़ पकड़ के एक एक ग्रुप, ये बहुत आगे की स्टेज है। पर मनसा सेवा वास्तव में ऐसी ही है, करनी नहीं होती है, वो परिणाम है, आत्मा की शुद्धि का परिणाम है। दिव्य बुद्धि आ गई जहां पर आत्मा अपने आप फेंकना चालू करेगी प्रकाश को। तो इसमें एक योग का अभ्यास आपको बता रहे हैं क्या करना है, जो कि अभी अभी हम करेंगे एक मिनट के लिए। अभी एक मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे और अभ्यास बहुत सिंपल है जो कि रोज करना है। ये सोचना कि मैं आत्मा चमकता हुआ हीरा हूं यहां पर, और शिव बाबा की किरणें इस पर पड़ रही है और पड़ते ही सात रंग की किरणें बाहर फैल रही है। ओम शांति। तो ये अभ्यास करना है, छोटा सा अभ्यास है बट बहुत पावरफुल। मैं आत्मा हीरा, ज्ञान सूर्य की किरणें उस पर पड़ी, सात रंग इंद्रधनुष की तरह चारों ओर बिखर रहे हैं। तो ये मनसा सेवा है। तो मनसा से शक्तियों का दान दो, तुम दाता हो। दूसरा, वाचा से ज्ञान। आठ घंटा यदि सेवा जब तक ना करो तब तक खाना हराम है। तीन दिन पहले था, तीन या दो दिन पहले, अच्छा पीना तो ज्ञान मुख से निरंतर ज्ञान की धारा बहती रहे, मुरली के शब्द हमारे मुख से निकलते रहे, जैसे वो सुनाता है हम भी मास्टर मुरलीधर बने। तो मुख से ज्ञान, कर्म से गुण, ये बहुत पावरफुल सेवा है। इसमें कुछ नहीं कर रहे, बाबा ने कहा ना भले प्रोग्राम मत करो, भले भाषण मत करो, पर अनुभव कराओ, आगे कहा है। तो कर्म से गुणों का दान, कोई देखे और उसको लगे कि हमें ऐसा योगी बनना है, हमने कुछ बोला भी नहीं, कुछ सिखाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया उसको, हमको तो पता भी नहीं उसने हमको देखा, पीछे से ही देख लिया और उसको प्रेरणा आ गई कि ऐसा तो पवित्रता हमें हमारे जीवन में होनी चाहिए, ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, ऐसी स्थिति हमको लानी है। तो ये हो गया कर्म द्वारा गुणों का दान। उसके बाद में संबंध संपर्क से चिमन भाई जी कौन सा दान करेंगे, खुशी का दान करो। कैसे कैसे, जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उसको खुशी हो जाए, खुश हो जाए। संडे की मुरली, कल की मुरली में कहा है ना डिस्टर्ब होना है ना डिस्टर्ब करना है, तुम्हें संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, ये है नंबर वन सेवाधारी, ये है नंबर वन प्राइज। हाँ कल संडे सेवाधारियों से मुलाकात। फिर लास्ट है समय द्वारा, इंटेलेक्ट से, बुद्धि से क्या देना है। अब ये क्या है, नई बात बोल दी ना बाबा ने, मैं तुमको नई नई बातें होना बताता हूं, क्या है ये प्रकाश भाई, बुद्धि से समय का दान क्या करना है। हमारी दिव्य बुद्धि से दूसरों की मदद करना, उनको समय देना, समय बचाना भी, मदद करना भी, समय देना भी, समाधान स्वरूप परखना। दान क्या कर रहे, समय का दान देना है, ये दान की लिस्ट है। दान दान मतलब दूसरों को टाइम देना, ये है सीधा अर्थ, क्योंकि दान की लिस्ट है ये पांचों। हाँ विवेक बुद्धि दिव्य इंटेलेक्ट से, डिवाइन बुद्धि से, क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य बुद्धि है। पर भावना से करो, पर देना टाइम है, फोकस इधर है टाइम पर। भावना नहीं, इंटेलेक्ट, बुद्धि और भावना अलग है। ये बुद्धि से तुमको समय का दान देना है, तो ये ऊपर की चार करते रहो तो पांचवी अपने आप होती रहो, पांचवी करते रहो तो ऊपर की चार अपने आप होती रहेगी। तो ये काम करना है। ये क्या बताया? फिर बाबा ने कहा दो चीजें, एक है चंदन का वृक्ष और ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण कल्चर। इसके विषय में क्या बताया? तुम्हारा विदेशी कल्चर नहीं है, तुम्हारा अंग्रेजी कल्चर नहीं, अमेरिका अफ्रीका अमेरिकन कल्चर नहीं है, तुम्हारा एक ही कल्चर है ब्राह्मण कल्चर, और एक चंदन का वृक्ष है। पांच खंड मिलकर एक चंदन का वृक्ष, एक ही ब्राह्मण कल्चर, एक ही स्वरूप, एक ही मत श्रीमत। तो ये दो चीजें हैं, चंदन का वृक्ष और ब्राह्मण कल्चर, ये दो बातें। उसके बाद में तुम्हें नवीनता क्या लानी है? प्रोग्राम बहुत कर लिए, दो प्रोग्राम बहुत कर लिए, कॉल ऑफ टाइम और पीस ऑफ माइंड, फिर से दो, दो तो बहुत किए, पर दो चीजें अभी और करना बाकी है। क्या? अनुभव और खजानों को सफल करना और अनुभवी मूर्त बनना, ये काम बाकी है। अनुभव में भी दो चीजें और, कौन सी दो? अनुभव क्या करता है? अनुभव खींचता है और अनुभव भूलता नहीं है, दो बातें। अनुभव जिसने कर लिया वो खींचेगा उसको, और अनुभव उसको भूलेगा नहीं। तो पांच चीजों का अनुभव कराना है आत्माओं को, कौन सी पांच चीजें? रुको, अपना अशोक भाई, कौन सी चीजों का अनुभव कराना है बाबा? कल की मुरली का बताओ, हफ्ते भर की नहीं, किस चीज का अनुभव कराना है आत्मा को? सबसे पहले तो ज्ञान, ज्ञान की पॉइंट्स का अनुभव हुआ है क्या? बाबा ने कहा दूसरों को सुनाते हो वो सब तो ठीक है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, पर अनुभव किया क्या उसका? ज्ञान की एक एक पॉइंट का अनुभव, चाहे सुनाने वाला चाहे सुनने वाले कोई भी हो, सुनाना बहुत आसान है पर अनुभव नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है कि सुनाने वाले को अनुभव हो रहा है। सुनाना तो ऐसा है, रटे रटाया भी सुना सकते हैं, बस सुनाना बुद्धि से याद करो और सुनाओ, आसान है। और अनुभव, अनुभव तो कुछ और ही है। तो सबसे पहली चीज ज्ञान का अनुभव, ज्ञान की एक एक पॉइंट का अनुभव करो, जो पॉइंट्स आती है उसका अनुभव, ठहर जाना वहां पर, रुक जाना वहां पर, बुद्धि में अंदर अंदर घुसने देना उस पॉइंट को, और फिर उसका अनुभव करना, पहला। दूसरा शक्तियों का अनुभव, लिस्ट बहुत है शक्तियों की, पर क्या उनका अनुभव किया है? कोई भी एक ले लेना और उसका अनुभव करना। तीसरा गुणों का अनुभव। चौथा आत्मिक स्थिति का अनुभव। कितनी अच्छी बात बताई, आत्मिक स्थिति का अनुभव। आत्मिक स्थिति में जब बैठते हो तो कैसे संसार दिखाई देता है? हलचल नहीं दिखाई देगी। जब शरीर भान में रहते हैं, देह भान में रहता है, तो सब जगह हलचल दिखाई देती है, सब जगह गड़बड़ दिखाई देती है, सब जगह गलत ही गलत दिखाई देता है। एक बार वो मेडिटेशन हॉल में बाबा आए, इधर ओम शांति भवन में बाबा आए थे, तो सब भाई बहनों ने बहुत सारी चिट्ठियां दी थी कंप्लेंट्स वाली, यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, यहाँ ये गड़बड़ है, वहां वो गड़बड़ है, और राजू भाई बैठ के लिख रहे थे, टाइप कर रहे थे। तो बाबा ने कहा पहले टाइपिंग बंद करो, बाबा के शब्द थे, टाइपिंग पहले बंद करो। और वो बहुत सारा सुनाया था बाबा को, यहाँ ये वहां वो ये ऐसा वो ऐसा। तो बाबा ने कहा था, जो आज की मुरली में भी एक वाक्य आया है बहुत पावरफुल, बाबा ने कहा था चाहे कितनी भी हलचल हो, आने वाले सूरज को, आने वाली सुबह को कोई रोक नहीं सकेगा। क्या इसमें निश्चय है? चाहे कितनी भी हलचल हो, पर आने वाले वाली सुबह को क्या कोई रोक सकेगा? आज की मुरली में एक वाक्य है ऐसा, एक बहुत पावरफुल, क्या है मंजुबेन? बस बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा, आज की मुरली में है, बस कॉमा यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। ऐसी ही बात बाबा ने अव्यक्त वाणी में, जो कि कहीं टाइप नहीं थी, यहां बैठ के कही थी कि बंद करो पहले, मधुबन वालों से मिल रहे थे, बहुत सारी कंप्लेंट्स बाबा को सुना दी थी, पावरफुल कंप्लेंट्स. तो बाबा ने कहा था पहले टाइपिंग बंद करो और आने वाले सुबह को कोई रोक नहीं सकेगा, क्या इसमें निश्चय है कि ये जो भी हो रहा है पर सुबह तो होकर रहेगी, तो बस ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा. तुम्हारे अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए. हंस कहा है उस दिन कहा था खगिया. कैसे खगिया? नहीं आशीष भाई दिखाओ खगिया एक बार. तो ऐसी खगिया. तो पांच चीजों का अनुभव, ज्ञान, गुण, शक्तियां, चौथा आत्मिक स्थिति और पांचवा परमात्मा स्नेह का अनुभव. नए लोगों को परमात्मा स्नेह का अनुभव करा दो, बस बाकी कुछ नहीं सुनाओ. परमात्मा स्नेह से आंसू आ जाए, आप ही आ जाएगी ढूंढते ढूंढते कहां है, तो अनुभव करा दो. तो बाबा ने कहा किसी भी स्थान पर किसी भी स्थिति में कितना भी समय आत्मिक बल और परमात्मा बल का अनुभव कराओ आत्माओं को. ये भी एक वाक्य है मुरली में, किसी भी स्थान कितना भी समय जितना चाहो उतना समय. तो ये था नवीनता क्या लानी है. इसके पहले था ब्राह्मण कल्चर और चंदन का वृक्ष, उसके पहला था पांच प्रकार के दान देने हैं. अब और एक चीज है यहाँ पे ड्रिल कराई पापा ने, और दो ही सीट भरी है अभी तक, माँ और बाप. इसके बीच में बहुत बड़ी मुरली है, वो सब कट कर दिया, बहुत सारी पैराग्राफ है. ये मुरली तब की है जबकि दादी प्रकाशमणि मुंबई में थी और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जिसमें फिर मुन्नीबेन ने कहा था पहली बार 40 साल में हम लोग बाबा से दूर है, वो सब है उसमें. तो वो वहां थे, 7 पेज की मुरली है. कितने सारे ग्रुप से मिले हैं बाबा इसमें, ढेर सारे. और फिर लास्ट में ये पैराग्राफ है जो सीधा ले लिया कि बाबा ने यहाँ पे ड्रिल कराई. अब ड्रिल में और दो चीजें, किसी भी स्थिति में और कितने किसी भी जितना चाहो और किसी भी समय, जिस समय और जो स्थिति बनाना चाहो बना सकते हो, और एक सेकंड में बनाओ, और हलचल होनी है आगे. तो तीन सम्मान दिए थे, कौन कौन से? मैं श्रेष्ठ, संगम युगी, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ ब्राह्मण. पुरुषोत्तम क्या? पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, इसमें स्थित हो जाओ. और कितना देर साइलेंस था देखा, जैसे ही ड्रिल कराई बाबा ने कहा इसमें स्थित हो जाओ, और साइलेंस था पूरा एक मिनट. भगवान ये ड्रिल सिखा रहा है कि तुम अपने समान में स्थित हो जाओ बस. वो ये सब नहीं बताता तुम्हारी ये समस्या है तो ये समाधान है, ये समस्या है तो वो समाधान, कुछ नहीं, बस इसमें स्थित हो जाओ, दैट्स इट, फुल स्टॉप. दूसरा समान भविष्य का, मैं फरिश्ता स्वरूप हूं, डबल लाइट हूं, इसमें स्थित हो जाओ. तीसरा समान फिर से संगम योगी समान, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मनसा से विश्व में शक्तियां फैल रही है, किरणें फैल रही है, शक्तियों की किरणें फैल रही है. तो केवल छोटे छोटे समान लेना और उसमें स्थित हो जाना और उसका अभ्यास करना. और यह अभ्यास कोई बैठ के भी करने की जरूरत नहीं है, कार में, गाड़ी में चलते फिरते उठते बैठते, केवल छोटा सा समान, मैं संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं. तो ये फिर से जब चाहो और जितना समय चाहो ये कर सको, फिर से दो बातें हैं. और फिर तो याद कर दिया. तो सारी मुरली का सार कहो या होमवर्क कहो, क्या निकालेंगे, क्या होमवर्क है? सबसे पहले तो स्नेह से स्वयं को भरना है, क्योंकि स्नेह चुंबक है. और एक बात, दुआओं वाली पॉइंट रह गई है, दुआएं जब ये करोगे तो दुआएं स्वतः मिलेगी. दुआएं क्या करेगी? लिफ्ट का काम करेगी. दुआओं की लिफ्ट में एक सेकंड में पैसे, जो वहां तुमने लंदन में प्रोग्राम किया एक मिनट, बाप कहते एक सेकंड, स्मृति का स्विच ऑन करो, दुआओं की लिफ्ट में बैठो और उड़ो, सबसे सहज है ये. तो दुआएं, तो सबसे पहला काम पूरी मुरली से सार लेंगे, सबसे पहले तो परमात्मा प्रेम, इस प्रेम के महत्व को जानना है और कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है संसार के प्रेम से, और कैसा वो प्रेम तुच्छ है. एक बाप के अतिरिक्त, एक अल्प के अतिरिक्त, एक अल्प ही मक्खन है, बाकी सब छाछ. संसार के लोग छाछ, संसार के संबंध छाछ, संसार की पद प्रतिष्ठाएं छाछ, संसार का सब कुछ छाछ ही छाछ है, छाछ का सागर है संसार। चारों ओर छाछ में बैठकर नदी हमें छाछ के समुद्र में लोग तैर रहे डूबने के लिए। और बाप है मक्खन का सागर, तो एक अल्प के अतिरिक्त एक अल्प ही मक्खन है, बाकी सब छाछ। मक्खन इसके लिए तो खाना तुम पात्र हो, तुम परमात्मा स्नेही बने। बाबा ने कहा तुम परमात्मा स्नेही बने, ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सबसे पहला काम मुरली से होमवर्क, परमात्मा स्नेह को बढ़ाना है, इसके महत्व को जानना है, इसकी तुलना क्या क्या की बाबा ने, इसके महत्व क्या क्या बताया, संसार में स्नेह किसको समझा जाता है और भगवान स्नेह किसको कहता है, ये पहला काम। दूसरा अंडरलाइन करो और अंडरलाइन और क्या करो, एडिशन करो, कौन सी चीज देने वाली। तो इस परिवार में क्या करना, सहयोगी और संसार की आत्माओं को देना, और देने की पांच चीजें सारे दिन भर ही, मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क और समय और बुद्धि, ये पांच से देना। उसके बाद में अनुभव कराना, कौन सी चीजों का अनुभव कराना, आत्माओं को पांच चीजों का अनुभव, क्योंकि अनुभव खींचेगा और अनुभव क्या करेगा, भूलेगा नहीं। तो ये पांच चीजों का, कौन कौन सी पांच चीजों का अनुभव कराना, ज्ञान का, ये खुद ही अनुभव करना, ये कराना बाद में, पहले करना, ज्ञान का, गुण का, शक्ति का, परमात्मा प्रेम का और आत्मिक स्थिति का स्वयं अनुभव करो। तो ये काम करना है। उसके बाद में दो सीटें खाली है, केवल दो सीटें भरी है, बाकी सब खाली है, ये भी अच्छा है, दो ही खाली है, ज्यादा पुरुषार्थ हो जाएगा। तो दो ही सीट, फिर समहाउ सम टाइम और समथिंग, ये बाबा को पसंद नहीं है। फिर उसके बाद में दो फायदे होंगे, एक तो उनका कल्याण और दूसरा स्वयं मेहनत मुक्त, स्वयं विघ्न मुक्त और समस्या मुक्त। तो विघ्न मुक्त करना स्वयं को, समस्या मुक्त करना स्वयं को, ये भी हमारा कर्तव्य है। वो चिल्ला रहे हैं, उनको क्या करो, वो कह रहे हे कृपा के देव, हे कृपा की देविया, क्या मांग रहे है, सच्चा प्रेम और शक्तियां मांग रहे, शक्तियां दो हे देवी देवो, कृपा करो हे कृपा के देव देविया, ये दो। तो वो श्लोक चिल्ला रहे, तो उनको दो, उनकी प्यास बुझाओ, वो तड़प रहे, दुखी है संसार के लोग, तो उनको दो प्रकार की उनकी पुकार, एक तो प्यार की और दूसरी शक्ति की, शक्ति शक्ति और प्यार, ये दो चीजें वो मांग रही है। तो उनको आपको आवाज नहीं आता है, देखा एकदम गहरी पॉइंट पकड़ लिया आपने, तो आपको आवाज नहीं आता है। और बच्चे बाबा को क्या कहते हैं, माता है बाबा को, बाबा आपको हमारी आवाज नहीं आती है क्या, हम इतना चिल्ला रहे, पहले हमारी मांगे पूरी करो, फिर हम भक्तों की मांगे पूरी करेंगे। हाँ, और एक दो चीज, लेट और टू लेट, बोर्ड दो प्रकार के, लेट और टू लेट, फिर से दो बातें, दो प्रकार के बोर्ड। तो दो सीटें भरी है, बाकी खाली है, लेट और टू लेट, ये वापस दो चीजें। फिर अनुभव में दो बातें, भूलेगा नहीं और खींचेगा। उसके बाद में और दो चीजें, और दो चीजें कौन सी, समहाउ सम टाइम और समथिंग, और दो चीजें हाँ, समस्या मुक्त और विघ्न मुक्त, और दो चीजें, डबल फायदे हो गया। और हाँ, ब्राह्मण कल्चर और चंदन की, चंदन का वृक्ष, उसमें एक स्वरूप और एक मत, फिर दो चीजें, एक स्वरूप और एक मत। उसके बाद में और भी कोई पॉइंट है पूरी मुरली में, हाँ मतलब पास विद ऑनर, इसके लिए भी बाबा ने कहा। अच्छा, अभी इसके ऊपर सबने काम करना है, ये पास विद ऑनर क्या होता है, हम कल सोच रहे थे जब मुरली सुन रहे थे, पहली बार ये विचार आया कि ये पास विद ऑनर है क्या। एक होता है पास, दूसरा है पास विद ऑनर। पास विद ऑनर के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एक स्कूल है जिसमें सारे 10-40 विद्यार्थी है, अब एक है पासिंग मार्क और एक है पास विद ऑनर, तो इसका क्या है, नहीं पास विद ऑनर के लिए क्या करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा इसमें एक जोक है, वो एक छोटा बच्चा भगवान से बातें करते रहता है कि सारी चीजों में तूने बढ़ा दिया, पर थैंक्स कि पासिंग मार्क अभी भी 35 ही रखे है। बाकी इसका पेट्रोल का ये बढ़ गया, फिर वो डॉलर से मनी इतना हो गया, वो भी बढ़ गया, वो भी बढ़ गया, वो भी बढ़ गया, पर ये उतना ही है, ये ठीक है। तो ये एक चिंतन का विषय है, पास विद ऑनर क्या होता है और कैसे बने, मतलब जो जिसको आगे मार्क्स लेनी है उसने क्या एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसको। एक स्टूडेंट सोचता है कि मुझे ज्यादा मार्क्स लेने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, उसको कुछ और करना पड़ेगा जो सब लोग नहीं कर रहे, वो करना पड़ेगा। तो अब ये ढूंढो कमलेश भाई, ये सारे लोग क्या नहीं कर रहे जो मैं करूं, ये लोग क्या कर रहे हैं वो मैं करूं, बस ये सोचना है। ये लोग कितने बजे उठ रहे, ये लोग 3 बजे उठ रहे, मैं अभी 2:30 बजे उठूंगा, क्योंकि पास भी तो ऑनर लेना है ना। ये लोग ये कर रहे तो मैं ये करूं। तो ये सोचना पड़ेगा पास विद ऑनर के लिए क्या। फिर दूसरा चिंतन का विषय है, ये स्नेह चुंबक कैसे, किसको खींचता है, अलौकिक लव एज डिवाइन मैग्नेट, व्हाट इज इट। फिर उसके बाद में लव एज एरोप्लेन, तो ये जो लव का एरोप्लेन है ये कहां उड़ता है, कहां से टेक ऑफ करता है, एक पूरी मुरली इसके ऊपर है कि तुम्हारा एयरड्रोम कौन सा है, फ्यूल कौन सा है, बटन कौन सा है, उड़ता कैसे है, रिफाइंड डबल रिफाइंड, फिर कैसे कहां कहां घूमने जाते हो। और एक चीज, ये दुआओं का जो फ्लाइट है, ये जो लिफ्ट है, ये तुमको तीनों लोक की सैर कराता है, जहां उड़ना चाहो उड़ो, सूक्ष्म वतन, परमधाम और राजधानी, ये भी बोला बाबा ने एक जगह, ये तुमको तीनों जहां उड़ना चाहो उससे इससे जा सकते हो। और दूसरा है दुआएं लिफ्ट का काम करती है, चढ़ने का काम, चढ़ना अर्थात क्या, चढ़ना अर्थात क्या, मुरली में आया है, कोई समस्या का समाधान निकालने में कभी तुमको 2 घंटे लगते हैं तो कभी 2 दिन भी लगते हैं, इसको कहा जाता है चढ़ना। ये चढ़ना नहीं है, लिफ्ट क्या है, दुआएं क्या है, लिफ्ट, इसे तुम लिफ्ट हो जाते हो, ऊपर उठ जाते हो सीधा, ये चलना चढ़ना नहीं, लिफ्ट। तो ये लिफ्ट के, तो दुआएं लिफ्ट है, प्रेम चुंबक है, प्रेम विमान है, स्मृति स्विच है, स्मृति का स्विच ऑन करो। एक ही मुरली में देखो कितने ढेर सारे टॉपिक है चिंतन के। फिर है 2 चीजें और तुमको मिलती है, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, ये 2 चीजें और तुमको महसूस होती है, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर की महसूसता होगी। और भी 2 चीजें 2-3 रह गई है, कौन सी आप बताओ, हाँ ब्रह्मा बाप की 2 विशेषताएं, एक राजयुक्त एक योगयुक्त, ब्रह्मा बाबा की ये 2 विशेषताएं, रोजयुक्त और योगयुक्त, और वो हो गया, वो हो गया, जो नहीं हुआ वो बताओ, जो रह गया है उदास और उल्लास, और 2 बातें, और 2 बातें, स्थूल धन के बारे में भी एक बात कही थी, परमात्मा बैंक में पदम गुना जमा हो जाता है, अच्छी पॉइंट है, आज के वरदान में भी है ये बात, परमात्मा बैंक में पदम गुना जमा हो जाता है। सफल करो, सफलता मूर्त बनो, ये 2 बातें, सफल करो खजानों को और सफलता मूर्त बनो, 2 बातें, ये 2 बातें सब लिखनी है किसी ने, प्रैक्टिस ऑफ फाइनल, कोई तो लिखे, कौन लिखेगा, शिवानी बहन, सारी 2-2 बातें लिखना है, 2-2-2-2-2-2-2 जितनी सुनाई सारी, ठीक है। अच्छा, आज यह आया कल यह आया, आज यह हुआ कल वह हुआ, भाषण प्रोग्राम नहीं किया तो भी चलेगा, भाषण और प्रोग्राम, पर अनुभव जरूर करो, ये 5 चीजों पर, मेहनत मोहब्बत 2 बातें। तो ये इतनी सारी बातें थी सारी, ठीक है, ओम शांति।